है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रियों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम सब पिछले अध्ययन में देख चुके हैं कि यह पत्री इब्रानी मसीही विश्वासियों को लिखी गई थी। हमें इस पत्री के अध्ययन में इस तथ्य को सदैव मन में रखना है कि पेंतिकोस्त के दिन जिन 3,000 मनुष्यों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था वे अन्य जाति नहीं थे, सब के सब यहूदी या इब्रानी थे। पौलुस और बरनाबस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार करने तक कुछ वर्ष मसीही कलीसिया केवल यहूदियों की ही थी। अतः हमें इसे स्मरण रखते हुए इस पत्री का अध्ययन करना है। मेरे प्रियो, पिछले अध्ययन में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम उसकी निकटता में बने रहें और उसके प्रेम में अपने जीवन को बना रख सकें। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा आप प्रतिदिन हमारे जीवन से बोलते और बातचीत करते हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, एकाग्रता पन दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने सीखें तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। आज के इस अध्ययन पर आप अपने आशीष प्रदान करें ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। पिताजी, आज के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इस इब्रानी की पत्री को इस बात का स्मरण रखते हुए अध्ययन करें कि मसीही कलीसिया केवल यहूदियों की ही थी। तो आइए आप मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 18 से 21 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 18 से 21 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ लेखक सीनै पर्वत पर मूसा को व्यवस्था देने के समय के दृश्य का वर्णन कर रहा है। यह पुरानी व्यवस्था का वाचा है। वस्तु स्थिति यह थी कि यरूशलेम के ये मसीही जन बहुत हानि उठा रहे थे। प्रथा के अनुसार मंदिर जाना उनका अब भी अभ्यास था। वहां से मूसा की व्यवस्था का पाठ सुनते थे, परंतु अब वे व्यवस्था से भी वंचित हो गए थे और मंदिर की रीतियां भी त्याग चुके थे, और इस कारण वे समुदाय का भाग नहीं रहे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे जाति बाहर थे, और यही कारण है कि लेखक उनसे कहता है कि वे तो एक भिन्न पहाड़ के निकट आए हैं और वे सीनै पर्वत के पास लौटकर जाना नहीं चाहेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 में हम देखते हैं कि सीनै पर्वत पर जब व्यवस्था दी गई थी तब 3,000 मनुष्यों की मौत हुई थी, परंतु पेंतिकोस के दिन 3,000 मनुष्यों ने मुक्ति पाई थी। कहने का अर्थ यह है कि व्यवस्था का दिया जाना वास्तव में एक दुखद अनुभव था, परंतु पेंतिकोस के दिन जब सुसमाचार सुनाया गया तो मनुष्यों ने नया जन्म पाया। सीनै पर्वत का दृश्य भयानक था, गर्जन, बिजली चमकना, भूकंप, आंधी, आग, तुरही की बढ़ती हुई आवाज। वह दृश्य ऐसा भयानक था कि इसराइलियों ने मूसा से कहा, तू हमसे बातें करे तो हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर को मत बोलने दे। नहीं तो हम सब मर जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 19 पद में आप पढ़ सकते हैं। अतः आगे लेखक कहता है, तुम वहां तो जाना नहीं चाहोगे, हमने वह सब त्याग दिया है। मेरे प्रियो, मेरी कलिसिया में एक अति प्रिय महिला थी, परंतु वह वैसे ही थी जैसे स्त्री के लिए पौलुस दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 6 और 7 में कहता है, जो पापों से दबी और हर अभिलाषा के वश में है और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वह धनाढ्य परिवार से थी, संपन्न परिवार से थी, अतः खाना पीना आदि उसका अभ्यास था तथा अनाचार से चूकती भी नहीं थी, परंतु बाइबल अध्ययन में वह आना चाहती थी, वह आराधनाओं में भी आती थी, परंतु मेरी कलीसिया की सदस्य वह नहीं थी। एक दिन मैंने व्यवस्था पर उपदेश दिया तो बाद में उसने मुझसे कहा, व्यवस्था का दिया जाना कैसा अनुपम दृश्य था। मैंने उससे कहा कि व्यवस्था का दिया जाना अनुपम नहीं वरन बाइबल में एक सर्वाधिक भयानक दृश्य है, और व्यवस्था से उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। यही कारण था कि उसमें बलि चढ़ाने का प्रावधान था। एक पशु की जान जाती थी और उसका लहू बहाया जाता था। व्यवस्था तो उन्हें दोषी ही ठहराती थी। मेरे प्रियो, ये इब्रानी विश्वासी मंदिर जाकर विधियां निभाने के आदि थे, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं था। अतः लेखक कहता है कि उनके पास अब भी कुछ है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। स्मरण रखें कि लेखक इब्रानियों को लिख रहा है। सियोन पर्वत यरूशलेम में दाऊद का स्थान था, उसका महल वहां पर था और उसकी कब्र भी वही थी। सियोन दाऊद का मनपसंद स्थान था। अधिकांश इब्रानी विश्वासी अब भी यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए जाते थे, परंतु सताव आरंभ हो जाने के कारण उन्हें यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया था। अतः लेखक उन्हें आश्वासन देता है कि उनका यरूशलेम स्वर्ग में है, सियोन पर्वत स्वर्गिक स्थान है और जीवित परमेश्वर का अनंत नगर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसे नया यरूशलेम भी कहा गया है। मेरे मित्रों, मैं आपका मकान संख्या और मार्ग का नाम तो नहीं दे सकता, परंतु मेरा पता निश्चय ही नए यरूशलेम का है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम यहां पहुंचे हैं। हमें यहूदियों की तुलना में जो व्यवस्था के अधीन थे, प्रभु यीशु में कहीं अधिक उत्तम वस्तुएं प्राप्त हैं। इसीलिए लिखा है लाखों स्वर्गदूतों। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि स्वर्गदूतों की सेवा कलीसिया से संबंधित नहीं है, परंतु हम एक दिन नए यरूशलेम में अवश्य होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना एक महान आराधना का दृश्य व्यक्त करता है जो उसने स्वर्ग में देखा। वह कहता है कि 10,000 गुना सृजित प्राणी वहां हैं। तदोपरांत उसने मुड़कर देखा कि वहां असंख्य लोग थे, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। मैं कभी स्वर्गदूत नहीं देखा, परंतु उनके बारे में सोचता अवश्य हूं। एक दिन मैं नए यरूशलेम में प्रवेश करके आपके साथ मेमने की आराधना में सहभागी होऊंगा। वहां स्वर्गदूत भी होंगे, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? मेरे प्रियो, यदि कोई मुझसे कहता है कि उसने स्वप्न में स्वर्गदूतों से बात की, तो मैं उससे कहता हूं कि वह अपने रात के भोजन का ध्यान करे कि वह क्या खाया था। इससे उसे स्वर्गदूत के दर्शन की बात समझ में आएगी। यदि आप सोचते हैं कि आपने स्वर्गदूत को देखा है, तो यह आपका भ्रम है। परंतु हाँ, आप उनके निवास स्थान में अवश्य जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 23 पद। लिखा है, और उन पहिलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। लिखा है उन पहिलौठों, यद्यपि प्रभु यीशु पहिलौठा कहा गया है, परंतु यहाँ यह उसके संदर्भ में नहीं है। लेखक उन्हें पहलौठा कह रहा है जिनका नया जन्म हुआ है। केवल वे ही लोग स्वर्ग में होंगे। यह पहलौठों की कलिसिया है जो उठाए जाने के दिन यहाँ लाए जाएंगे। आगे लिखा है जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि जब मैं सबके न्यायी के समक्ष खड़ा होऊंगा, तब वहां एक मनुष्य होगा जिसने मेरे पापों का दंड चुका दिया होगा और मेरा लेखा स्पष्ट होगा। लिखा है सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। यहां पर सिद्ध का अर्थ है पुराने नियम के भक्तों की आत्माएं जिनको उद्धार प्राप्त हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है वह उनके लिए भी मरा था। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं यीशु। हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में लाए जाएंगे और तब हम देखते हैं नई वाचा के मध्यस्थ। वह नई वाचा का मध्यस्थ है। वह सीने पर्वत की चोटी पर से गरजता नहीं। जब वह यहाँ था तब उसने पर्वत पर बैठकर अपने राज्य के नियम दिए। मेरे विचार में उसकी उपस्थिति में आना और उसे नई वाचा का मध्यस्थ देखना अत्यंत सुहावना होगा। लिखा है छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मेरे प्रियो, हाबिल का लहू बदले के लिए पुकार रहा था, परंतु प्रभु यीशु का लहू उद्धार की चर्चा करता है। यह एक अद्भुत बात है। पद 3 में हमने पढ़ा है, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। लेखक इब्रानी विश्वासियों से आशा करता है कि वे मंदिर पर से अपनी आंखें उठा लें, बलि के लहू से अपनी आंखें हटा लें, विधि विधानों से अपनी आंखें हटाकर प्रभु यीशु की ओर निहारें और लगाएं। आज हमें आराधनालय, धर्म संस्थाओं और मनुष्यों पर से दृष्टि हटाकर केवल और केवल प्रभु यीशु को देखना है। मेरे मित्रों, मंदिर अपने वैभव और संस्कारों के स्थान पर विलुप्त होने वाला है। अब वे एक नए प्रबंध के अधीन थे। उस पर ध्यान लगाएं, यीशु को निहारें। किसी ने उचित ही कहा है कि यह हमारे विश्वास की सादगी है। मैं उससे सहमत हूं, परंतु आवश्यकता से अधिक सुगमता में खतरा भी है। केवल विश्वास ही से उद्धार है, जी हाँ, परंतु कुछ प्रचारकों ने उद्धार को एक सरल अंकगणित बना दिया है। यदि आप कुछ प्रश्नों का उत्तर हाँ में दें, तो आप मसीही हैं। इस विश्वास में पवित्र आत्मा के काम करने का स्थान नहीं रह जाता है। इसमें पाप के अंगीकार का भी प्रावधान नहीं है। यह केवल सिर हिलाने की स्वीकृति है जिसमें प्रभु यीशु से पहचान मात्र करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका नया जन्म हो गया है। आज एक वाक्यांश प्रचलित है, प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दो। आपको यीशु को कौन सा जीवन देना है? यदि आप पापी रूप में प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आपके पास जीवन तो है ही नहीं, आप तो पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। लोग यह भी कहते हैं, प्रभु यीशु को अपना दिल दे दो। मेरे मित्रों, वह उस गंदे पुराने दिल का प्रभु यीशु क्या करेगा? मत्ती रची सुसमाचार 15 अध्याय उसके 19 पद में मन से उत्पन्न अशुद्धता की सूची को आप पढ़ें। उसने आपका मन नहीं मांगा है, वह कहता है कि वह हमें नया मन देगा। आज हमें यह बोध होना है कि हम पापी हैं। आज के प्रचार अभियान बहुत मन भावन होते हैं। मैं मनुष्यों को पाप के बोध के लिए रोते हुए नहीं देखता। आज लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित उनमें नहीं है। मेरे प्रियो, हम इस बात को जान ले कि हम पापी हैं, मैं पापी हूँ, और तब प्रभु के पास आ जाएं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 25 पद में लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि प्रभु यीशु अति महान है, क्योंकि उसका वचन अति महत्वपूर्ण है, अतः उस पर ध्यान देना लाभकारी है। वह बड़े लाभ का होगा। जी हाँ मेरे मित्रों, वह बड़े लाभ का होगा, क्योंकि वे लोग पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? यदि आप देखना चाहते हैं कि व्यवस्था पालकों के साथ क्या हुआ, तो आप आज के इसराइल को ही देख लें। वहां शांति नहीं है। आज 2012 वर्ष पूर्व हो गए हैं, परंतु उनकी कहानी दुखद ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी वाणी सुनने से इनकार किया। मेरे मित्रों, उन्होंने व्यवस्था की चेतावनियों और वचनों को सुनने से भी इनकार किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। चेतावनी को उन्होंने अनसुना करना चाहा, जो एक अत्यधिक गंभीर बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु यीशु कहता है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यदि आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो जान लेंगे कि यह सच है या नहीं, परंतु यदि आप इनकार करें तो ऐसे महान उद्धार को अनदेखा करके आप कैसे बच सकते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक बातों को देखता और जानता है। आप ये न सोचें कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी कलीसिया के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को जानें कि आप कैसे बच सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 26 पद में लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। मेरे मित्रों, व्यवस्था देने के समय भूकंप आया था और प्रभु यीशु के क्रूस पर जान देते समय भी भूकंप आया था। परमेश्वर कहता है कि वह दिन आता है जब वह सब कुछ हिला देगा। मैं गगनचुंबी इमारतों को देखकर कहता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान से देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नहीं रहोगे। परमेश्वर कहता है कि वह आकाश और पृथ्वी सबको हिला देगा। क्या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करेगा? परमेश्वर सब कुछ हिलाएगा क्योंकि वह सृजित प्राणियों को बता देना चाहता है कि वह कुछ वस्तुएं अटल हैं, और इनमें से एक है प्रभु यीशु में जीवित विश्वास। वह हमारी चट्टान है जिस पर हम आश्रित हैं। वह हिल नहीं सकता है। क्या आज आपको एक सुरक्षित स्थान चाहिए अपने जीवन की रक्षा के लिए? वही एक सुरक्षित स्थान है जहां आप जा सकते हैं। वह सुरक्षित स्थान है। मनुष्य आज संसार को सुरक्षित बनाना चाहता है, परंतु वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा कुछ कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए सड़क पर चलना भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश की हर एक परिस्थिति से आप परिचित हैं, परंतु परमेश्वर इस पृथ्वी को एक दिन सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा या सुरक्षित स्थान बनाएगा, और इसके लिए उसे सब कुछ हिलाना होगा। हो सकता है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके मकान, आपके व्यवसाय आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आप गलत हैं। परमेश्वर सब कुछ को हिलाएगा, यहां तक कि आपके हृदय को भी झकझोर देगा। यह समय है कि हम उस महान परमेश्वर को जानें, उसके निकटता में आए और उसकी सुरक्षा में आ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा चट्टान है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा भी आपने फिर से अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको सामर्थ्य और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा। मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा। जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, यीशु ने जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे नरक ले जाने वाले धागे, देखा तो मैंने ये पाया मौत का फंदा था आगे, चारों ओर रहे थे।